लक्ष्मण, तुम जानकी जी को लेकर के गिरि की कंदरा में चले जाओ, उनकी सुरक्षा में तैनात रहो और मैं इस राक्षसी सेना से निपट लेता हूं। और तब हम देखते हैं वहां पर, पहले तो खर दूषण ने दूत भेजे और श्री राम ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया और फिर इसके बाद घमासान युद्ध होता है। अब ये राक्षस माया भी करते हैं और कपट युद्ध करते हैं। अब गोस्वामी जी एक यहां पर व्यंग करते हैं, ये देवता कैसे हैं, ये तमाशबीन है, इन्हें तमाशा देखना अच्छा लगता है। जैसे हम में से बहुत से लोग तमाशबीन होते हैं, कभी दो व्यक्तियों में झगड़ा हो गया तो कितना हुजूम लग जाता है, भीड़ लग जाती है, तो ये देवता भी जहां भी झगड़ा होता है, गोस्वामी जी संकेत करते हैं कि अपने आ जाते हैं आकाश में तमाशा देखने के लिए और अपनी पत्नियों को भी साथ ले आते हैं कि आओ देखो कैसा तमाशा चला है, युद्ध चला है, ऊपर से देखें। और इन देवताओं का क्या काम है, आप बहुत अधिक हुआ तो जयनाद कर देना, जयघोष कर देना, बाजे बजा देना और वहां से फूलों की वर्षा कर देना, बस इतना काम है इन देवताओं का। वो स्वामी जी चुटकी लेते हैं। तो यहां पर भी जिस समय युद्ध होने लगा, भगवान श्री राम का खर दूषण और उसकी 14,000 सेना के साथ ये देवता आ गए आकाश मार्ग में, अपने सजे हुए विमानों में बैठे हैं, अपनी पत्नियों के साथ, गालों में पानों की बिल्लरियां भरी हुई है, गिलौरी भरे हुए हैं और वहां से वे देख करके कहते हैं, जैसे हम भी कहते हैं ना कहीं झगड़ा हो रहा हो तो जरा बस पान की पीक थूकते हुए कहते हैं बड़ा अन्याय है जी, बड़ा अन्याय है, सरासर अन्याय है। ये देवता भी वहां से बैठ करके कहते हैं बड़ा विषम युद्ध है, बड़ा अन्याय है, एक ओर देखो यहां पर 14,000 राक्षसों की सेना और दूसरी ओर श्री राम अकेले, अरे बड़ा विषम युद्ध है। और जब वे देखते हैं विषम युद्ध को, क्या देखते हैं, मही परत उठी भट भीरत मरत न करत माया अति घनी सुर डरत 14,000 पेत बिलोक एक अवध धनी। डरते हैं ये, एक और 14,000 प्रेत माने राक्षस, दूसरी ओर एकमात्र अकेले श्री राम और वहां से ऊपर गालों में पान की गिलौरियां दबाए हुए कहते हैं कि अब बड़ा विषम युद्ध है, बड़ा विषम युद्ध है, बड़ा अन्यायपूर्ण युद्ध है। मानो संकेत क्या है, संकेत यह है कि गोस्वामी जी कहते हैं अरे दुष्टो, यदि सचमुच तुम्हें श्री राम के प्रति इतनी भक्ति है और न्याय के प्रति इतनी श्रद्धा है तो तुम लोग तो 14,000 से भी संख्या में अधिक हो, ऊपर से नीचे क्यों नहीं उतर आते, श्री राम का पक्ष लेकर के युद्ध क्यों नहीं करते, इन राक्षसों की सेना का विनाश करने में सहायक क्यों नहीं बनते। सो नहीं बने, हम केवल ऊपर से कहेंगे कि बड़ा अन्याय है, हम केवल न्याय की घोषणा करेंगे, उसके अनुसार कार्य नहीं करेंगे, यह देवताओं की वृत्ति है। हम में से प्रायः 95% लोग या अधिक लोग देवता होते हैं, माने जो हम सज्जन होते हैं, सज्जनों की बात मैं कह रहा हूं कि दुर्जन और सज्जन का प्रतिशत कहना तो बड़ा कठिन है कि 1% भी हम में सज्जन होते हैं कि नहीं, या कठिन, पर जो सज्जन होते हैं उनमें भी शायद 99% लोग देवताओं के समान सज्जन होते हैं। कैसे सज्जन होते हैं, हम सज्जन कहलाने वाले लोग, पूजा करने वाले लोग, मंदिर में जाने वाले लोग, सच्चर्चा करने में रुचि दिखलाने वाले लोग एक जगह खड़े हैं, 6-7 लोग पान की दुकान पर पान खा रहे हैं, एकदम देखा एक व्यक्ति सड़क से जा रहा था, दो गुंडों ने घेर लिया, सताने लगे। अब हम जो अच्छे कहलाने वाले लोग हैं कहते हैं देखो क्या अन्याय है, सरासर दिन में ये गुंडे सता रहे हैं उस राहगीर को, अरे भाई सरकार बिल्कुल निकम्मी है, पुलिस बिल्कुल निकम्मी है, दिन दहाड़े देखो। अगर कोई आकर के हमसे कहे कि भाई आप लोगों को जब इतनी व्यथा है तो आप लोग तो 7 हैं, राहगीर मिलकर के 8 हो जाएंगे और वे तो गुंडे केवल 2 हैं, तो आप लोग मिलकर के उन गुंडों को दबोचते क्यों नहीं, उनको पाठ क्यों नहीं सिखा देते। नहीं भैया, अरे इसी मोहल्ले में तो रहना है, इन गुंडों का क्या ठिकाना, कब रास्ता चलते छुरा भोंक दें, घर की बहू बेटियां हैं, अरे मगर से वैर करना पानी में रह करके, या हम हैं देवता के समान, बड़े सज्जन हैं, धर्म की बड़ी बात करते हैं, अन्याय के प्रतिकार के संबंध में हमारी बातें सुनकर के कोई कायल हो जाए कि हम बड़े प्रतिक्रियावादी हैं या हमारे भीतर में न्याय के प्रति अत्यंत श्रद्धा है, पर जब कोई कार्य देखता है हम बड़े गुदी गुदी हैं,
स्वामी विवेकानंद की भाषा में कि हम में से अधिक लोग गुड नहीं होते, गुडी गुडी होते हैं, कि अच्छे नहीं होते, मानो हम गुडी गुडी होते हैं। अन्याय और प्रतिकार की, अन्याय की निंदा तो कर सकते हैं पर हमसे प्रतिकार नहीं होता है। तो ये देवता कैसे हैं? ऐसे ही हैं, ऊपर से देखते हैं और ऊपर से देख करके बस क्या करेंगे, ऊपर से देखेंगे और थोड़ा फूल बरसा देंगे और बस थोड़ा बजा देंगे, बाजा बजा देंगे, बस इतने में अपने कर्तव्य की इति मान लेते हैं। गोस्वामी जी चुटकी लेते हैं,
हर्षित बरसहि सुमन सुर बाजहि गगन निशान।
ये हर्ष हो रहे, होते हैं हर्षित, थोड़ा सा देख लेते हैं भगवान श्री राम अब जरा बिजी हो जाएंगे, रावणों की सेना, इस राक्षसों की सेना को मार रहे, थोड़ा हर्षित हो गए और बस हाँ सुमन उन्होंने बरसा दिए, वाह फूल बरसा दिए और बाजे वहां बजा दिए। सोचते हैं हमने धर्म का ढिंढोरा पीट दिया, हमने डंके की चोट पर धर्म की घोषणा कर दी। ये ऐसे देवता हैं, मानो तुलसी जी बहुत चुटकी लेकर के कहते हैं कि देवता कैसे हैं, अपने स्वार्थ पर ध्यान है। और जब राम रावण युद्ध होता है, दूसरा प्रसंग ला करके हमारे समक्ष रखते हैं तो कहते हैं कि ये देवता फिर से आ गए। राम रावण युद्ध हो रहा है, फिर से तुलसी लिखते हैं कि ऊपर में आकाश में आ गए अपने अपने विमानों में, पत्नियों को लेकर के, अपने साथ फूल नगाड़े सब कुछ लेकर के आ गए। और वे क्या करते हैं, जिस समय एक ऐसा क्षण आता है जब पता नहीं चलता कि श्री राम जीतेंगे या रावण जीतेगा, उस समय ये देवता एक विलक्षण बात करते हैं। क्या विलक्षण बात करते हैं? कहते हैं गोस्वामी जी,
प्रभु देखि हरस बिषाद उर सुर बदत जय 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 करी।
जिस समय देखा देवताओं ने कि अब तो ऐसा क्षण है कि श्री राम जीतेंगे या रावण जीतेगा, अचानक जोरों से जय हो जय हो जय हो कर दिया और बरसा ही सुमन देव, और देवताओं ने सुमन बरसा दिए, फूल की वर्षा कर दी। अब स्वाभाविक लगता है कि गोस्वामी जी से संशयी ने कहा कि गोस्वामी जी आप देवताओं से किसी कारण से चिढ़े हुए हैं, इसलिए आपको देवता ये सुहाते नहीं, उनको आप स्वार्थी कहते हैं। देखिए वे जय हो कह रहे हैं, वहां पर से श्री राम की जय गा रहे हैं। तुलसी ने कहा कि तुमने तो ध्यान से देखा ही नहीं प्रसंग और तुमने यह बात देवताओं के संबंध में कह दी। अरे ठीक है वे जय हो जय हो जय हो तो जोरों से कह रहे हैं पर तुमने ध्यान दिया, वे यह नहीं कहते कि किसकी जय हो, या उन्होंने अपने लिए बचा करके रखा है, कदाचित रावण की जीत हो जाए तो रावण की जय हो और राम की जीत हो जाए तो राम की जय हो, उन्होंने जय हो तो कहा पर किसकी जय हो यह नहीं कहा। तात्पर्य यदि रावण जीत गया तो चले जाएंगे रावण के पास, कहेंगे कि महाराज क्या सुंदर युद्ध आपने किया, अरे वह राम छोकरा आपके सामने क्या टिक सकता था, वह बोला टिकेगा, आपकी जो शूरता है वीरता है वह तो विश्व में प्रसिद्ध है, देखिए हमने तो आपका ही जयगान किया था, रावण से कहेंगे। और रावण ने कहा होता दुष्टो यदि मेरा जयगान किया था तो तुम लोगों ने पुष्प राम की तरफ कैसे बरसाए, तो कहा महाराज वह पुष्प तो हमने आप पर ही बरसाए थे पर वह तो हवा का झोंका आ गया जो फूलों को उधर राम की तरफ बहा करके ले गया। ये देवता है, माने देवता कैसे हैं कि जहां दोनों तरफ सधे ठीक बना करके, और कदाचित श्री राम जीत गए जाकर के कहेंगे प्रभु हम क्या रावण का जयगान कर सकते हैं, हमने तो आपकी ही जय गाई थी, फूलों की वर्षा आप पर की थी, वह तो पवन का झोंका था जो थोड़े से फूल राक्षसों की तरफ उड़ा करके ले गया था, तो जय हो कहेंगे पर यह नहीं कहेंगे कि किसकी जय हो, और फूल भी ऐसा बरसाएंगे कि दोनों पर जाकर के गिरे ताकि अपनी बात ठीक बनी रहे। ये देवता ऐसे हैं जो अपना स्वार्थ साधना चाहते हैं। ये देवता कैसे हैं जो अपनी जेब में सब प्रकार की पताकाएं भर करके रखते हैं और जो पताका सत्ता पर आती है उस पताका को जेब से निकाल लेते हैं, कहते हैं हम तो आपके झंडे के नीचे खड़े होने वाले हैं, आपके झंडे के साथ चलने वाले हैं। यह चुटकी गोस्वामी तुलसीदास जी लेते हैं देवताओं के प्रति, माने यह उनकी दृष्टि है देवताओं के प्रति, कहते हैं कि ये हैं देवता, इनके मन में केवल स्वार्थ की कामना है। क्या ये देवता नहीं जानते कि एक क्या रावण नामक एक निशिचर के विनाश से संसार की समस्या क्या विनष्ट हो जाएगी? जानते हैं, मन में शायद जानते होंगे या न जानते होंगे, या स्वार्थ उनका इतना प्रबल है कि उधर उनका ख्याल ही नहीं जाता है, ऐसे ये देवता हैं। इसलिए अगर कोई आपको देवता कह दे तो थोड़ा चौकन्ना रहिएगा, ये देवता का क्या मतलब है। जो देवता आपको कहे तो आप पूछिएगा कि तुलसी की दृष्टि से देवता न वेदों की दृष्टि से देवता, किस अर्थ में आप मुझे देवता कह रहे हैं, आप पूछ लीजिएगा। तो जो हो, तुलसी यह मानते हैं कि एक रावण नामक व्यक्ति के विनाश के लिए भगवान का अवतार नहीं हुआ है। यदि रावण का वध ही करना होता तो कितने लोग थे, श्री राम के पहले भी इतने लोग थे जिनसे यह रावण हारा है। पढ़ते हैं हम कि बाली से युद्ध हुआ रावण का, और बाली ने रावण को युद्ध में परास्त किया, ऐसा कस के घूंसा मारा बाली ने कि रावण मूर्छित होकर के गिर पड़ा। इसका मतलब कि वह हार गया। अब बाली को गर्व तो अवश्य हुआ कि मैंने इस रावण को हरा दिया है, और बाली ने सोचा कि लोग अब मुझे कितना शूरवीर कहेंगे कि मैंने इतने बड़े योद्धा रावण को हरा दिया। दूसरे ही क्षण बाली के मन में एक विचार कौंधा, अरे सारी दुनिया तो रावण को बहुत बड़ा योद्धा मानती है, और अगर मैं बाद में कहूं लोगों से कि मैंने रावण को हरा दिया है तो लोग शायद मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए उसने एक काम किया, बेहोश पड़ा हुआ रावण था उसको उसने उठा लिया, और उठा करके अपनी बगल में दबा लिया, और दबा करके हम पढ़ते हैं कि 6 महीने तक वह दुनिया का चक्कर लगाता रहा, मानो वह दुनिया के सामने प्रमाण पत्र दिखाता रहा कि देखो मैंने रावण को हरा दिया है। अब कभी ऐसा नहीं कहना कि मैंने रावण को नहीं हराया है। गोस्वामी जी चुटकी लेते हैं कि ठीक है, बाली तो प्रमाण पत्र दिखाता घूम रहा था 6 महीने तक, रावण तो बहुत आनंद की नींद सोया होगा 6 महीने, क्योंकि उसे तो डर था ही नहीं कि गिरने का, चोट लगने का। वह जानता था कि बाली ही मेरी सुरक्षा करेगा, मैं उसका प्रमाण पत्र हूं, वह सुरक्षित वही रखेगा, और इसलिए वह दबा दबा तो आनंद की नींद सोया होगा। पर यह जो बाली है, प्रमाण पत्र की सुरक्षा की चिंता में 6 महीने तक सो नहीं सका, वह घूमता ही रहा, मानो यह व्यंग है। और इसका तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है कि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं यदि रावण का वध ही एकमात्र तात्पर्य होता तब तो बाली ने जब रावण को बगल में दबा करके रखा ही था तो जरा जोरों से दबा देता तो मर ही जाता, रावण का वहीं पर वध हो जाता, तो क्यों नहीं किया, वह भी नहीं हुआ। अच्छा उसे छोड़ दें, तम पढ़ते हैं कि बलि के बालकों ने पाताल लोक में रावण को बांध लिया था। अब जाम बांध ही लिया था, अगर रावण का खात्मा ही करना था, वध ही करना था, तो बलि के बालकों ने उसका वध कर दिया होता। ठीक है, उस प्रसंग को भी छोड़ दें, हम ऐसा पढ़ते हैं कि सहस्रार्जुन के साथ युद्ध करने में रावण पराजित हो गया। हम पढ़ते हैं एक बार यह रावण नदी के जल में प्रविष्ट होकर के पूजा कर रहा था, वह शिव भक्त था, एक हाथ में शिवलिंग उसने रखा है और दूसरे हाथ से वह पूजा कर रहा है नदी के जल में खड़े होकर के। इतने में हम पढ़ते हैं कि जल में जोरों से बाढ़ आ गई और उस बाढ़ में रावण की पूजा बह गई, बड़ा क्रोध आया, वह बाहर निकला कि नदी में अचानक बाढ़ कैसे आ गई। वह नदी के उद्गम की ओर चला, दूर जाने पर उसने देखा कि सहस्रबाहु अर्जुन अपनी ही पत्नियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा है, और उसमें वह क्या करता है, कभी कभी अपनी 1000 भुजाएं फैला करके नदी के प्रवाह को रोक देता है, फिर भुजाओं को समेट लेता है, तो जिस समय समेटता है उस समय जोरों से जल की बाढ़ आती है। तो ऐसी ही एक बाढ़ की अवस्था में रावण की पूजा बह गई। तो जब रावण को पराजित कर सकता था सहस्रबाहु, तो क्या उसका वध नहीं कर दे सकता था? तो रावण का वध ही करना था तो सहस्रबाहु के द्वारा हो जाता, वह भी नहीं हुआ। अब आप कहेंगे कि रावण का वध इन दो तीनों के द्वारा नहीं हुआ, अब ये तीनों भी तो राक्षस थे, ये भी राक्षस, यह जो बाली है उसमें भी राक्षसी और आसुरी वृत्ति है। अब बलि तो राक्षसों के राजा हैं और उनके यहां जो बालक हैं वे भी आसुरी वृत्ति से संपन्न हैं, और ये जो सहस्रार्जुन है वह भी तो आसुरी वृत्ति से संपन्न है। अब इनका रावण के साथ युद्ध होता है और उस युद्ध में रावण पराजित हो गया, तो आप कह सकते हैं कि इसमें कोई विशेषता नहीं मालूम पड़ती। हम कहेंगे क्यों विशेषता नहीं लगती, तो आप कह सकते हैं कि यह तो असुर और असुर का, दुर्गुण और दुर्गुण का युद्ध है। जैसे आपके मोहल्ले में दो गुंडे रहते हैं, एक का नाम है नागनाथ और दूसरे का नाम है सांपनाथ, अब दोनों में लड़ाई हो गई, तो आपको इससे क्या मतलब कि नागनाथ जीते या सांपनाथ जीते, कोई भी जीतेगा तो आपके लिए वह उतना ही कष्टकारी और दुखदायक है। तो जैसे आप उसमें एक प्रकार से निरपेक्ष रहेंगे, तो ठीक इसी प्रकार रावण और बाली का युद्ध हुआ, या रावण और बलि के बालकों का युद्ध हुआ या रावण और सहस्राजुन का युद्ध हुआ, ये ऐसे ही थे, दोनों आश्री भाव संपन्न। अब दोनों की युद्ध में एक की हार हो गई, एक की विजय हो गई, तो हमें क्या लेना देना। तो दुर्गुण से दुर्गुण हारे तो उसमें क्या कि काम क्रोध को हरा दे या क्रोध लोभ को हरा दे तो उसमें क्या। अगर गुण दुर्गुण को हरा दे, सद्गुण दुर्गुण को हरा दे, तब तो सार्थकता है। तो अगर ऐसा हम विचार प्रस्तुत करें तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं उसके लिए तो थे, उस समय भी भगवान परशुराम थे, उनको भी ईश्वर का अंशावतार कहा जाता है, तो भगवान परशुराम थे। अब परशुराम ने सहस्रार्जुन को हरा दिया, सहस्रार्जुन ने रावण को हरा दिया, तो क्या परशुराम रावण को नहीं हरा दे सकते थे? या तो बहुत सरल सा तर्क है, तो यदि सद्गुण के द्वारा ही सद्दुर्गुण का विनाश कराना था तो भगवान परशुराम के द्वारा रावण का वध करा दिया होता तो उससे भी समस्या का समाधान होता। तो जब इतने लोग विद्यमान थे जो रावण का वध कर दे सकते थे, तो क्या श्री राम का अवतरण इसीलिए हुआ कि उस रावण का वध कर दिया जाए? यह तुलसी नहीं मानते, यह तुलसी की दृष्टि नहीं है कि भगवान का अवतरण होता है श्री राम के रूप में कि एक रावण नामक निशाचर का वध करने के लिए, जिसका वध कई उस समय के लोग कर सकते थे, तो किसके लिए हुआ है? फिर यह जो श्री राम का अवतरण हुआ किस हेतु हुआ, यही गोस्वामी तुलसीदास जी रखते हैं और कहते हैं कि भगवान शंकर की दृष्टि, हम भगवान शंकर की दृष्टि से देखें वह दृष्टि क्या है। अब जैसे ये देवता आए रावण वध के पश्चात भगवान श्री राम को बधाई देने के लिए, उनकी प्रशंसा करते हैं, साधुवाद देते हैं, रावण की निंदा करते हैं, इतने में एक किसी ने कानाफूसी कर दी, अरे देखो भाई सब लोग तो आ गए, ब्रह्मा जी भी आए हैं, सूर्यराज इंद्र तो हैं ही हैं, सभी देवता यहां पर उपस्थित हैं, एक शंकर जी नहीं दिख रहे हैं। तो किसी ने टिप्पणी कर दी, अब शंकर जी कैसे आए, उनका प्यारा चेला मारा गया है, अब जिस व्यक्ति ने उनके प्यारे चेले का वध किया है क्या उस व्यक्ति को साधुवाद देने आ सकते हैं? किसी ने इस प्रकार की टिप्पणी की और यह टिप्पणी मानो बल ग्रहण करने लगी कि लोग सोचने लगे कि शंकर जी इसीलिए नहीं आए क्योंकि उनका यह प्यारा शिष्य रावण मारा गया, तो अब वे श्री राम के पास कैसे आ सकते हैं, श्री राम को बधाई कैसे दे सकते हैं। पर गोस्वामी जी लिखते हैं कि क्या शंकर जी नहीं आए? आए, वे आते हैं। कब आते हैं? वे आते हैं और किस समय आते हैं यह गोस्वामी जी ठीक लिखते हैं, अस्तुति करे करे सुर चले चढ़ी चढ़ी रुचिर विमान, देख सुअवसर राम पहां आये वो शंभु सुजान। अस्तुति करी करी सुर चले चढ़ी चढ़ी रुचिर विमान, देख सुअवसर राम पहां आये वो शंभु सुजान। आते हैं जिस समय देवता स्तुति करके अपने अपने विमानों में बैठ करके वापस चले जाते हैं, उस समय अवसर देख करके सुअवसर देख करके सुजान शंकर आते हैं। सुजान शंकर आते हैं मानो शिव जी ने सोचा कि अजानों की भीड़ में मेरा क्या काम, जरा अजानों की भीड़ छट जाए तो मैं जाऊं। अब ये देवता हैं अजान, अज्ञानी, मोह से अंधे हुए, स्वार्थ से अंधे हुए, उनकी भीड़ में भगवान शंकर आना नहीं चाहते, और जब देवता हट गए तब भगवान शंकर आते हैं और आकर के क्या उन्होंने प्रशंसा की भगवान श्री राम की, वंदना की, स्तुति की नहीं की, बल्कि उन्होंने एक विचित्र बात कही, आकर के क्या कहा, माम अभिरक्षय रघुकुल नायक धित बरचाप रुचिर कर सायक, मोह महाघन पटल प्रभंजन संशय विपिन अनल सुर रंजन। माम अभिरक्षय रघुकुल नायक, हे रघुकुल नायक आप मेरी रक्षा कीजिए, आप मेरी रक्षा कीजिए। अब यह बड़ी विचित्र बात मालूम पड़ती है कि राक्षस कुल का संहार हो गया, अब कोई ऐसा योद्धा बाकी नहीं है। अब यह जो भगवान शंकर प्रार्थना के स्वर में कहते हैं श्री राम से कि आप मेरी रक्षा कीजिए, तो किससे रक्षा की वे प्रार्थना कर रहे हैं? ऐसा कौन है जिससे भगवान शंकर को भय है? बस यही प्रश्न है कि वे स्तुति नहीं करते श्री राम की, वंदना नहीं करते, बल्कि यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप मेरी रक्षा कीजिए, आप मेरी रक्षा कीजिए। और यह रक्षा रक्षा की प्रार्थना किस लिए तो स्वामी जी के रहते हैं। रावण कौन है या कुंभकर्ण कौन है या मेघनाथ कौन है, हम पढ़ते हैं विनय पत्रिका में, मोह दशमौली तद्भ्रात अहंकार पाकारजित काम विश्रामहारी। यह जो दशमौली रावण है वह मोह है, यह जो कुंभकर्ण है वह अहंकार है, यह जो मेघनाद है वह काम है। तो भगवान शंकर की प्रार्थना का तात्पर्य यह है कि प्रभु आपने बाहर में दिखने वाले रावण नामक एक निशिचर का विनाश कर दिया है, पर उससे समस्या का समाधान होगा नहीं प्रभु। और क्या होता है, हम भी तो रावण का वध करते हैं, साल में एक दिन हम लोग करते हैं ना दशहरे के दिन। और आजकल तो रावण की मूर्तियां मैंने देखा कि गांव-गांव में बन गई हैं, और वहां पर सीमेंट कंक्रीट की मूर्तियां, और वह भी बाहर में उसको भी बढ़िया रंग दे दिया गया है। रावण तो हंस करके कहता है तुम राम की मूर्ति को तो मंदिर के अंदर कमरे में बांध करके रखते हो, और मैं यहां पर खड़ा हूं फिर भी मेरा विनाश नहीं होता। और हम लोग साल में एक दिन दशहरे के दिन वहां पर जाते हैं और एक नाटक करते हैं रावण को मारने का, ऐसा ऐसा करके एक पुतला जला देते हैं। रावण कहता है मार लो मार लो, 365 दिन में 5 मिनट मुझे मारो, बाकी 364 दिन 23 घंटे और 55 मिनट तो मैं तुम्हें ही मारता रहूंगा। यह बिल्कुल रावण का सिद्धांत है, और हम लोग यही मान करके चलते हैं कि आज हमने रावण को मार दिया, आज हम फिर पत्ती बांटते हैं, विजय की पत्तियां बांटते रहते हैं खुशी में, और रावण तो इधर खुश हो रहा है कि किसने किसको मारा। यह समझ की कितनी भूल है, समझ का फेर है कि किसने किसको मारा, हमने रावण को मारा या रावण हमें मार रहा है। तो भगवान शंकर का तात्पर्य यह है कि प्रभु आपने एक रावण का विनाश कर दिया, कोई समस्या हल तो हुई नहीं। यह जो रावण है यह मोह के रूप में मेरे भीतर विद्यमान है, यह जो कुंभकर्ण है आपने भले ही एक कुंभकर्ण का विनाश किया होगा पर वह अहंकार के रूप में नित्य मेरे भीतर विद्यमान है। मेघनाद का काम मारा गया है प्रभु, पर मेरे भीतर में तो वह काम के रूप में विद्यमान है। जब तक आप मेरे भीतर में छिपे हुए इस मोह के रावण का वध नहीं करेंगे, इस क्रोध के अहंकार के कुंभकर्ण का वध नहीं करेंगे, इस काम के मेघनाद का नाश नहीं करेंगे प्रभु, तब तक मैं आपकी स्तुति नहीं गाऊंगा। यह शंकर जी की प्रार्थना है। तो भगवान शंकर का तात्पर्य यह है और तुलसी का दर्शन यह है कि जब पूछा गया कि आप श्री राम की ओर किस दृष्टि से देखते हैं, तो तुलसी कहते हैं मेरे राम का अवतरण कोई रावण के विनाश के लिए थोड़े ही हुआ था, तो रावणत्व के विनाश के लिए हुआ था। यह तुलसी कहेंगे, यह उनका दर्शन है कि भगवान श्री राम का अवतरण हुआ है रावणत्व के विनाश के लिए। यह जो रावण की विचारधारा है इस विचारधारा का अंत करने के लिए, और यदि इस विचारधारा का अंत न हो तो एक व्यक्ति के नष्ट होने से समस्या का नाश नहीं होता, समस्या बनी ही रहती है। जब तक यह रावणत्व की विचारधारा संसार में विद्यमान है तब तक एक रावण मर जाए दूसरा रावण उत्पन्न होगा, वह मरे तीसरा उत्पन्न होगा, हम में से प्रत्येक के भीतर में यह रावण विद्यमान होगा। और इसलिए भगवान शंकर भगवान श्री राम से प्रार्थना के स्वर में कहते हैं मैं आपकी स्तुति तब गाऊंगा जब आप मेरे हृदय में बैठे हुए यह जो रावण है मोह का, यह जो कुंभकर्ण है अहंकार का, यह जो मेघनाद है काम का, उसका वध करेंगे प्रभु, तब तो मैं आपकी जय गाऊंगा, आपको मैं साधुवाद दूंगा। और ठीक यही दृष्टि हनुमान जी की है। हनुमान जी जाते हैं भक्ति देवी की खोज करने के लिए। हम पढ़ते हैं कि जिस समय सीता देवी की खोज में वानरों की सेना भेजी गई तो सबसे अंत में प्रभु ने हनुमान को अपने पास बुलाया और अपनी उंगली से मुद्रिका निकाल करके हनुमान जी को उन्होंने दी और सीता जी के लिए संदेशा दिया। कहा हनुमान तुम जानकी जी को मेरा यह संदेशा दे देना, यह मुंदरी दे देना और तुम उनका समाचार मेरे पास ले आओ। और इसके बाद हम पढ़ते हैं कि हनुमान जी उस यात्रा पर चढ़ पड़ते हैं। अब वह कौन सी यात्रा है, वह यात्रा है हनुमान जी जा रहे हैं सीता जी की खोज में। यह यात्रा है मानो उसको कई दृष्टियों से देखा जा सकता है कि एक साधक भक्ति देवी के पास कैसे पहुंचता है, यह भक्ति देवी के पास जाने की यात्रा है। हनुमान जी यदि साधक हैं तो सीता जी भक्ति देवी हैं। सानुज सीय समेत प्रभु राजत परन कुटीर भगत ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। मानो भक्ति देवी हैं माता सीता और हनुमान जी सीता की खोज में जा रहे हैं, मानो भक्ति की खोज में जा रहे हैं। उनका यह किस प्रकार का भाव, वे चले जा रहे हैं प्रभु का काम करने के लिए, आकाश मार्ग से उड़ करके जा रहे हैं। गोस्वामी जी बड़ा सुंदर चित्रित करते हैं, बाधाएं आती हैं। तीन बाधाएं उनको मिले, दो तो समुद्र के बीच और एक समुद्र पार करने के बाद, ये तीन बाधाएं हैं। तो पहली बाधा जो मिलती है, हम पढ़ते हैं कि वह सुरसा की बाधा है। सुरसा आती है, आप लोग सभी इस प्रसंग को जानते हैं।
सुरसा नाम अहिन कै माता, पठ इनियाय कहीं तहीं बाता, आज सुरन मोहि दीन अहारा, सुनत बचन का पवन कुमारा।
आई और उसने आकर के कहा कि आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। और तात्पर्य क्या, हम पढ़ते हैं कि देवताओं ने भेजा है। सुरसा नाम अहिन कै माता पठही ने, किसने पढ़ाया, किसने भेजा, देवताओं ने। और इसीलिए आकर के वह हनुमान से कहती है कि आज तो देवताओं ने मुझे आहार दिया है, भोजन दिया है। और तब वह कह रही है हनुमान जी से, मैं तुम्हें खाऊंगी। हनुमान जी ने कहा कि मैया खा लेना, अगर तुम भूखी हो, बहुत दिनों से तुम्हें भोजन नहीं मिला है, तो अवश्य तुम मुझे खा लेना, पर मैं जरा राम काज कर लूं।
राम काज कर फिर मैं आवो, सीता कहीं सुधि प्रभु ही सुनावो, तब तब बदन पैठी हूं आई, सत्य कहूं वही जान दे माई।
सत्य कहता हूं माता, मैं राम काज करके लौटाऊं और फिर तुम्हारे मुख में मैं समा जाऊंगा। सुरसा ने कहा कि नहीं, मैं नहीं मानती, मैं तो बड़ी भूखी हूं, अभी ही तुम्हें खाना चाहती हूं। और तब हम पढ़ते हैं कि हनुमान जी ने विरक्त होकर के कहा कि फिर बोल क्यों रही हो, जब तुम मेरी बात सुनती ही नहीं, तो फिर लो खा लो। तो उसने अपना मुंह फैलाया खाने के लिए, पर हनुमान जी ने अपना बदन दूना कर लिया। फिर उसने दूना मुंह किया, हनुमान जी ने और दूना कर लिया। तब
जस जस सुरसा बदन बढ़ावा,
जहां पर कहा
तासुदून कपरूप दिखावा,
हनुमान जी अपना रूप मानो और भी उसे दुगना कर लेते हैं। सुरसा अपना बदन अपना मुंह फैलाती जाती है और अंत में
सत जो जनते ही आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुतलीना।
तो उसने जिस समय 100 योजन मुंह फैला लिया, हनुमान जी अत्यंत छोटे हो गए। और फिर उसके बाद वे प्रवेश करते हैं सुरसा के मुख में, कहते हैं लो तुम मुझे खाना ही चाहती थी, तो मैं तुम्हारे मुख में प्रवेश करता हूं और प्रवेश करके तुम मुझे खा लो। पर सुरसा ने तो 100 योजन तक मुंह को फैला दिया है, और जब तक वह अपना मुंह बंद करे न करे, तब तक हनुमान जी निकल करके आ जाते हैं। और उन्होंने नमस्कार किया, कहा मां तुम खाना चाहती थी, मैं तुम्हारे मुंह में प्रविष्ट हुआ, पर तुम खा नहीं सकी हो, तो अब तो मुझे जाने दोगी। और हम पढ़ते हैं कि सुरसा ने आशीर्वाद दिया कि जाओ कार्य करके आओ। अब यह बड़ी विचित्र बात है कि हनुमान जी प्रभु का कार्य संपन्न करने के लिए जा रहे हैं और देवता उसमें बाधा उत्पन्न करते हैं। क्या तात्पर्य है, देवता क्यों बाधा उत्पन्न करते हैं? यह बड़ा सांकेतिक तात्पर्य है जो गोस्वामी जी इसके माध्यम से हमारे समक्ष रखते हैं। ये देवता कौन है? देवता है सद्गुण के प्रतीक, सद्गुण सुरगुण अंब अदिति सी। गोस्वामी जी कहते हैं सद्गुण कैसे हैं, सुरगुण है। ये जो सद्गुण हैं, ये जो देवता हैं, ये मानो सद्गुण के प्रतीक हैं। और प्रत्येक सद्गुण के साथ एक पुण्याभिमान लगा रहता है। जैसे मैं दान दूं तो दानी का अहंकार, मैं तपस्या करूं तो तपस्वी का अहंकार, मैं सत्य भाषण करूं तो मैं सत्यवादी का अहंकार, यह सब मैं पाल करके अपने भीतर में रखता हूं। तो पुण्य जब मैं करता हूं तो उसका पुण्याभिमान आकर के मुझे खा लेता है, मुझे घेर लेता है। तो यह जो पुण्याभिमान है, यही मानो देवता है। यह पुण्य के अभिमानी देवता मेरे भीतर में यह बाधा आती है। यह जो बाधा आई सुरसा की, भले ही यहां पर ऐसा बताया गया कि हनुमान जी जा रहे हैं और उनके रास्ते में सुरसा की बाधा आ गई, पर प्रतीकात्मक दृष्टि से देखें, हम जब भी ईश्वर की ओर जाते हैं, साधना करते हैं, तो हमारे भीतर ही यह सुरसा आकर के खड़ी होती है। यह हमारा अहंकार, पुण्य कर्मों के पीछे जो हमारा अभिमान रहता है, वही सुरसा है। और सुरसा को किसने भेजा? देवताओं ने भेजा, पुण्य कर्मों ने भेजा, हमारे पुण्य कर्मों ने इस सुरसा के अभिमान को भेजा, अहंकार उत्पन्न होता है और जो अहंकारी हो जाता है वह भगवान के पास तो जा नहीं सकता।